ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं विनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यः प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युवतीनां यथा योनिं यूनं च युवतौ यथा मनो विरमते तद्वान् मनो मे रमतां त्वयि। जलधर शशिवर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचरगणवृन्दौ क्रीडमानौ व्रजेषु नटवरगतकेशौ नीलपीताम्बराढ्यौ जगतजननहेतौ रामकृष्णौ नतोऽस्मि। अजानलम्बितभुजौ कर्णकनकावदादौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरौ द्विजभरौ जगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मे श्रीश्रीबलभद्रसुभद्रपयन्ति श्रीश्रीजगन्नाथाय ते नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूधरे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप इस विशेष रविवार को इस विशेष मंदिर में विशेष भागवतम क्लास में आए हैं। इसलिए आप सब विशिष्ट अतिथि हैं हमारे। इन आप सबसे अनुरोध करेंगे कि एक होता है अतिथि, दूसरा होता है आतिथेय, गेस्ट और होस्ट। बहुत ही जल्द आप सब होस्ट बन जाइए अधिक से अधिक लोगों को और आकर्षित करिए ताकि मायापुर फेस्टिवल में भी हमारा टेम्पल भरा रहे। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध पे चर्चा करेंगे। श्री श्वेत पाठ पे जो श्लोक लिखा है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर आचार्य की टीका के अनुसार भगवत कृपा युक्त जितना मेरे से हो सके मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए इसके बारे में बोलना चाहूँगा। इस उद्यम में आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। एवं विमोक्ष गजयूतपमब्जनाभ तेनाभिपार्षद गतिं गमितेन युक्तः गंधर्वसिद्ध विबुधैरुपगीयमानः कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोघात्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की एवं इस प्रकार विमोक्ष उद्धार करके गज यूथपम हाथियों के राजा गजेंद्र को अब जनाभ भगवान जिनकी नाभि से कमल निकलता है तेना उसके अथवा गजेंद्र के द्वारा अपि भी पार्षद गतिम भगवान के पार्षद का पद गमितेना भले से प्राप्त युक्त के साथ साथ गंधर्व गंधर्व लोक के निवासी सिद्ध सिद्ध लोक के निवासी विभुदय ही तथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा उपगीयमाना महिमा मंडित होकर कर्म जिसके कार्यकलाप अद्भुतम आश्चर्यजनक स्वभावनम अपने धाम को गरुड़ आसन गरुड़ पर आसीन होकर अगात लौट गए। कृपया मेरे बात अनुवाद दोहराएं। गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से तथा घड़ियाल जैसे ही इस भौतिक जगत से छुड़ाकर भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और अपने साथ गजेंद्र को भी लेते गए। ध्यानपूर्वक श्रवण करें तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में विमोक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। भक्ति के लिए मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है भगवान के पार्षद का पद प्राप्त करना। निर्विशेषवादी ब्रह्म में तल्लीन होने की मुक्ति से ही संतुष्ट रहते हैं, किंतु भक्ति के लिए मुक्ति का अर्थ भगवान के तेज में तल्लीन होना नहीं अपितु वैकुंठ लोक जाकर भगवान का पार्षद बनना है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया। एक श्लोक है, तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमानो भुंजार एवात्मगतम विभागम हृद्वाग बपुर्भिर् विदतं नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो आपकी कृपा का इच्छुक है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सह लेता है, जो मन वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और सदैव आपको नमस्कार करता है, वह निश्चय ही मुक्ति का योग्य पात्र है। जो भक्त इस भौतिक जगत में सब कुछ सहकर भक्ति करता है वह मुक्ति पदे सदाय भाग अर्थात मुक्ति का प्रामाणिक पात्र होता है। दाय भाग शब्द भगवान की कृपा के उत्तराधिकार को बताता है। भक्ति को सांसारिक परिस्थितियों की परवाह न करके एकमात्र भक्ति में माफ करना भक्त को सांसारिक परिस्थितियों की परवाह न करके एकमात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब वह स्वतः वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करता है उसे वैकुंठ लोक जाने का उसी तरह अधिकार प्राप्त होता है जिस प्रकार पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। जब कोई भक्त मुक्ति पाता है तो वह भौतिक कलमश से छूट जाता है और भगवान का दास नियुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में की गई है। मुक्तिर्हि तन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। स्वरूप शब्द सारूप्य मुक्ति का सूचक है। स्वरूपा शब्द सारूप्य मुक्ति का सूचक है, जिसका अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना और भगवान के ही समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके जो चतुर्भुज होता है और शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए रहता है, भगवान का नित्य पार्षद बने रहना। निर्विशेषवादी तथा भक्त की मुक्ति में यही अंतर है कि भक्त तुरंत ही भगवान का नित्य दास नियुक्त हो जाता है, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर भी असुरक्षित रहता है और सामान्यतः इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। आरुच्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः परत पतंत अनादृत युष्मद अंग्रयः, भागवतम के दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया। यद्यपि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तक उठकर उसी में प्रवेश कर जाता है, किंतु भगवान की सेवा में ना लगा रह होने के कारण पुनः भौतिकतावादी परोपकारी कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है। इस तरह वह अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्था खोलने, गरीबों को भोजन कराने तथा इसी प्रकार की सांसारिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए नीचे आता है, जिन्हें वह भगवान की सेवा करने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझता है। अनादृत युष्मद अंग्रयः, निर्विशेषवादी यह नहीं सोचते कि भगवान की सेवा करना गरीब की सेवा करने या स्कूल अथवा अस्पताल खोलने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। यद्यपि वे यह कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है, तो भी वे इस मिथ्या जगत की सेवा करने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं और भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप लोग क्यों भागवतम क्लास सुनने आए हैं, क्यों बताइए? हिंदी में क्या? अच्छा, उनको बोल लीजिए खुदा से कहा आत्मशुद्धि के लिए और ज्ञान में। हाँ, और आपके कारण तो वो गए तो दूसरा कारण गया और किसी को चार। यस, भगवान की गुण और लीला को सुनने के लिए और भौतिक प्रदर्शन, मन की शुद्धता के लिए और सच्चाई जानने के लिए। ठीक है। यस मंत्री, जान सकते हैं। नवदास भक्ति में बड़े बड़े पंडित लोग हैं। ये सब कोई कारण भी नहीं होता तो भी सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि जो लोग इस गजेंद्र की कथा सुनते हैं उनको स्वर्ग मिलेगा, यश मिलेगा, कलयुग के कलमशों से मुक्ति मिलेगी। और यहां पर बताया गया है कि दुस्वप्न अथवा बुरे सपनों से मुक्ति मिलेगी, बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्लास एक बुरा सपना है तो ये इसमें गिना नहीं जाएगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये क्लास सुनना पड़ेगा। बताया गया है विशेष करके कि कलयुग के कलमश से हमें मुक्ति मिल सकती है। अलग अलग प्रकार के लोग भक्ति में जुड़ते हैं, चतुर्विधा भजन तमाम जना सुकृतना और जना, सबके लिए भागवतम में कुछ ना कुछ है। देर इज समथिंग इन द भागवतम फॉर एवरी वन। कई प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे मार्केट में, उसका एडवर्टाइजिंग करते हैं, देर इज समथिंग इन इट फॉर एवरी वन, और भागवतम ऐसा ही है। लेकिन कोई भी किसी भी भाव से इस भागवत कथा का श्रवण करे, विशेष करके इस गजेंद्र मोक्ष का, उनको कलि के कलमश से मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो ये भी बताते हैं कि 13 दिन का जो संस्कार है, किसी के घर में अगर मृत्यु होती है तो अगर गजेंद्र मोक्ष का अगर अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, तो फिर वो 13 दिन के संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर भी लेंगे तो गजेंद्र मोक्ष के अध्ययन और पठन से ज्यादा लाभ मिलता है। तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में सबको पता है, लगभग भारत में सबको थोड़ा बहुत सबको मालूम ही है। कथा संक्षेप में कथा बताने की भी कोशिश नहीं करेंगे तो कई दिनों से बताया जा रहा है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर जाने कि एक राजा इंद्रद्युम्न जिनको शाप मिला था अगस्त्य ऋषि से, और एक गंधर्व राजा हु नाम है, आपसे पूछने रहा हूं, उनको भी शाप मिला था देवला ऋषि से, तो दोनों शाप कोइंसाइड हो गए भगवान के सानिध्य के लिए। यह संक्षेप में, लेकिन इस अध्याय में विशेष करके बताया गया कि किस प्रकार गजेंद्र परम भगवान के संगी बनते हैं, पार्षद बन जाते हैं, और किस प्रकार एक घड़ियाल जो कि गंधर्व बनता है, और विशेष करके भगवान के श्रेयस्कर कल्याणकर आदेश हमारे लिए क्या है, इन दो जीवों को माध्यम बनाते हुए भगवान जो आदेश हमें देते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में, इस पार्श्वभूमि में हम इस श्लोक को समझे, इस अध्याय को समझे। आगे बताया गया कि जब महाराज इंद्रद्युम्न जो मलय पर्वत के रेंज को क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज को क्या बोलते हैं, पर्वत आवली, श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला में, मलय पर्वत के पर्वत श्रृंखला में उन्होंने अपने जो है छोटा सा आश्रम बनाया था, वहां पर तपस्या कर रहे थे, भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। तब अगस्त्य मुनि वहां पे आए और उनको उचित शिष्टाचार के अनुसार, क्योंकि स्वागत नहीं किया गया इसलिए उनको शाप मिला कि भगवान आपको बचाएंगे जब एक घड़ियाल आपको पकड़ेगा, अब गजेंद्र के रूप में। अब सवाल यह आता है, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहा था, उपासना कर रहा था, ध्यान कर रहा था, उसको शाप दे दिया, बेचारा क्या कुजूर क्या उसका। तो हमें बस इतना समझना है, ये तो आसानी से हम बचने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं इस्कॉन में भी, कि ये तो भगवान की लीला है, वो तो है ही, लेकिन जैसे कि श्री वैष्णव सिद्धांत तो ये है कि सब कुछ लीला है, अचिंत्य लीला है, सब कुछ पूरे संपूर्ण सृष्टि अचिंत्य लीला है। और हमारे आचार्य भी बताते हैं, जीवेरे कारण आशिया प्रपंच लीला को लो सुविस्तार, पूरे संपूर्ण सृष्टि का सृजन इसलिए हुआ है, एक प्रकार से भगवान की लीला है। लेकिन साथ साथ यहां पे समझना है कि महाराज इंद्रद्युम्न उन असंख्य पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से एक जन्म में हाथी बनने के वजह से बच गए, शॉर्टकट। तो कितने लोग हाथी बनना चाहेंगे, लेकिन ये ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि गुड एलिफेंट बैड एलिफेंट दोनों होते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में एक कथा आती है, बताते हैं मंदगति नामक एक राजा था जो कि बलि महाराज का पुत्र था। मंदगति इतना बड़ा था और चलते चलते मंदगति में चलता था, इसलिए वो स्लो चलता, बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि श्री रंगनाथ के दर्शन के लिए जब श्रीरंगम में जाता था तो तीर्थाटन करने के लिए जो भी लोग आते थे, कुछ हजारों लोग उसके पैरों तले कुचल जाते थे। तो एक त्रितुंड नामक एक ऋषि थे, उन्होंने बताया कि तुम क्योंकि इस प्रकार हाथी समान अपने बल के ऊपर गर्व है तुम्हें, अहंकार है, इसलिए तुम्हें मैं ये शाप दे रहा हूं कि तुम कुवलय पीठ नामक हाथी बन जाओ। वैसे एक तरीके से हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, अगर बुरा हाथी बन के भगवान द्वारा पीटा जाए, मारा जाए कुवलय पीठ बन के, तो भी सायुज मुक्ति मिलती है, और अगर गजेंद्र जैसा भगवान द्वारा स्वयं मोक्ष दिलाया जाए तो उसे सारूप्य मुक्ति तक मिल सकती है। जय श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा शिशिकरणता शिल प्रभा की जाए। तो अलग अलग प्रकार के मुक्ति हैं, बताइए कौन कौन से, हाथ ऊपर करके बताइए। यस माता जी, अलग अलग बताइए, मतलब सभी एक व्यक्ति नहीं, बाकी और भी लोग हैं, सबको चांस मिलना चाहिए। सारूप्य मतलब किन के समान, भगवान के समान, और कोई, और कौन सी मुक्ति है, यस सालोक्य मतलब उन्हीं के लोक में प्रवेश मिलना, और तीसरा, यस मंत्री सामीप्य मतलब, तो मतलब एक बात बताइए, भगवान के लोक में जाएंगे भगवान जैसा रूप नहीं मिलेगा, भगवान का सामीप्य नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, और चौथा क्या है, ठीक है वो दूसरे क्लास के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए मुझे, बाद में बताएंगे। अगला टॉप, अगला क्या है, अगले अगली मुक्ति क्या है? एक छूट गया था। यस मतलब सारष्टि मतलब ऐश्वर्य। इसके अलावा एक पांचवा है सायुज्य मुक्ति अथवा कैवल्य मुक्ति, जिसको वैष्णव उसकी भत्सना करते हैं। अर्थात एक प्रकार से भक्ति का लक्षण ही है मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष को तुच्छ मानना। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की तोई। भक्त तो सायुज्य मुक्ति जो कि भगवान में तल्लीन होना है, इसको तो कैवल्यम नरकायते मानता ही है, त्रिदश बुरा आकाश पुष्पायते ये तो मानते ही है। लेकिन बाकी साथ साथ जो भगवान के सामीप्य सालों के सारूप्य सारष्टि मुक्ति को भी भगवान का विशुद्ध भक्त जो है तुच्छ ही मानता है, क्योंकि जो भी चीज भगवान की सेवा उसे दिलाए उसके लिए स्वीकार्य है, ये तत्व है। तो यहां पर बताया गया है कि गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, भगवान के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और भगवान स्वयं गरुड़ासीन होकर उन्हें वापस अपने धाम ले गए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, कोशिश करेंगे आज, मैंने तो 8-9 शिक्षाएं देखी हैं जो मेरे समझ में आई, उसमें से कुछ 3-4 कम से कम आप लोग याद रखेंगे लास्ट में, या रखना है लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। तो पहली बात यहां पे बताया गया कि जैसे हमने समझा कि अगर एक जन्म के पीड़ा को प्राप्त करने से, उसे गुजरने से अगर हमें असंख्य जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है, तो इसको डिस्काउंट बोलते हैं कि पनिशमेंट बोलते हैं? डिस्काउंट। लेकिन साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि कुत्ती महारानी जैसे आपत्ति के लिए प्रार्थना कर रही है क्योंकि आपका स्मरण हो रहा है, हमें अपने औकात में रहना है, हमें ऐसा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद ने स्वयं ऐसा आदेश दिया था कि एज इट इज देयर सो मच ट्रबल वाई प्रे फॉर मोर ट्रबल, और परेशानी के लिए प्रार्थना ना करें ना? कि भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर् भव दर्शनम, ताकि पुनः दर्शन ना प्राप्त हो इस भवलोक का और भवरोग का, इसलिए भगवान आपका दर्शन मुझे बार बार मिले, और उसके लिए मेरे स्वीकार्य है कि बार बार मुझे क्या है आपत्ति मिले, विपत्ति। लेकिन भक्त जो है विपत्ति की परिस्थिति में या कष्ट की परिस्थिति में अथवा दुख की परिस्थिति में हमेशा उसे भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। तो एक महान श्लोक जो बताया गया कि तत्ते अनुकंपा, अनुकंपा ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना में आता है, अनुकंपा मतलब कृपा, भगवान की कृपा है। क्या बताया गया? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो, सुसमीक्षा मानो का मतलब है कि हर प्रकार से जो विपत्ति आती है और जो उसको लाभ प्राप्त होता है उसको समान दृष्टि से भक्त देता है, समीक्षा। इसको ये जो दुख जो प्राप्त हो रहा है उसको भी, उसमें भी भगवान का हाथ देखता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन विश्लेषण यही है कि हर परिस्थिति में कृष्ण के हाथ को देखना। कृष्ण की भूमिका क्या है मेरे साथ, ये जो घटना घट रही है इसमें कृष्ण की भूमिका क्या है, ये समझना है। और जिस हद तक हम इसको समझने की कोशिश करेंगे उस हद तक हम प्रगति करेंगे। यकीन करना है हमें कि आध्यात्मिक जीवन में इनजस्टिस अथवा अन्याय नामक चीज नहीं है, सिर्फ कृपा ही अलग अलग रूप लेते हैं। अभी इंद्रद्युम्न महाराज बोले हद कर दिया और भगवान मैंने तो आपका स्मरण किया और आपने मुझे हाथी बना दिया, नहीं, उस पर भी कृपा देखनी है भगवान की। कितनी विशेष कृपा है कि भगवान ने कुछ समय हाथी का रूप भले ही प्रदान कर दिया लेकिन तुरंत उनका भाव बंधन से मुक्ति दिला दी। इसलिए आठवें अध्याय के आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में प्रार्थना करते हैं गजेंद्र, मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुवृत मनसि प्रतिद प्रत्यक्ष प्रत्येक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। स्वांशेन सर्वतनुभृत मनसि प्रतीत, परमात्मा के रूप में सभी भूतों के हृदय में उपस्थित हैं, प्रकट होते हैं और अनुभव होता है आपका। स्वांशेन स्व अंशेन भगवान का अंश है, सर्वतनुभृत सभी के शरीरों में, सभी प्रकार के शरीरों में मनसि प्रतीत प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से समझ में आता है कि उनके मार्गदर्शन में ही हम चलते हैं। यहां पे बताया कि मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षण आया, मैं मेरे समान एक पशु, मैंने आपका शरण दिया है। पशुपाश विमोक्षण है, पाशा मतलब बंधन, और ये विमोक्षणा शब्द इस स्कंद में कई बार आता है, विशेष करके गजेंद्र के इस संदर्भ में ही 3-4 बार विमोक्षणा शब्द आता है। और इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि विमोक्षा ये शब्द जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उसको घड़ियाल से बचाने की बात की जा रही है विमोक्षा, लेकिन साथ साथ हमें ये याद रखना है, आचार्य बताते हैं कि घड़ियाल रूपी भवरोग से हम भी त्रस्त हैं, हमें भी घड़ियाल ने पकड़ा है भवरोग के, भौतिक इस भौतिक शक्ति के रूप में हम भी त्रस्त हैं उसका शरण लेके। तब फिर उससे बचने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसी प्रकार जैसे गजेंद्र कर रहे हैं। यहां तो बताया गया कि बुरे सपने अगर होते हैं तो सुबह उठ के गजेंद्र मोक्ष पड़ेंगे तो उससे मुक्ति मिलेगी, श्रुति फल में बताया गया। सारा भौतिक जगत और भव, ये जो भव सागर जो है एक बुरा सपना है, और इसलिए हर सुबह उठ के भागवतम का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कार्यक्रम दिया कम से कम 8 बजे तो, अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाया तो 7 बजे भी उठ के स्नान करके भागवतम क्लास में तो आके बैठो, इतना ऑप्शन दिया श्रील प्रभुपाद ने कि भवरोग से बचने के लिए इस भागवत श्रवण से हमें बहुत लाभ मिलता है। और गजेंद्र की प्रार्थना इस प्रकार है। तो यहां पे कई सारे शब्द हैं, जैसे मुक्ताया भूरी करुणाया, भूरी करुणाया मतलब अतीव कृपालु, भूरी करुणाया अतीव कृपालु, अनलिमिटेडली मर्सीफुल। किस प्रकार मर्सीफुल? हमें भौतिक भावबंधन की परिस्थितियों से मुक्त करने में सक्षम है पूरी तरह, इसलिए भूरी करुणाया। भूरी दा जना जो बताया गया, भगवान के भक्त भी ऐसे हैं, अति कृपालु हैं। और हर कोई हम में से एक पशु है, आचार्य बता दें, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, हम में से हर कोई पशु है और हम में से हर किसी को घड़ियाल ने इस प्रकार आक्रमण किया हम सबके ऊपर। भौतिक अस्तित्व के जो परिणत फल से, परिणत फल जितने भी है भौतिक अस्तित्व के, उन सबसे हम त्रस्त हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारणवश होता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडीली एग्जिस्टेंस। इस वजह से हमें ये जो उत्पीड़न जो है ये हो रहा है भौतिक शक्ति का। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, महात्मा नाम स्तु माम पार्था दैवी प्रकृति माश्रित, क्योंकि हम दैवी प्रकृति के आश्रय में नहीं है। आश्रम मतलब जहां पर आश्रय है, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचारी आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, जहां पर आश्रय लेते हैं परम भगवान का। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसमें यहां पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, विवेचन किया गया कि ये गजेंद्र मोक्ष सिर्फ उन लोगों के लिए जो ब्रह्मचारी आश्रम में है या किसी आश्रम में है। हालांकि गजेंद्र तो गृहस्थ आश्रम में ही था, लेकिन ये जो शिक्षाएं हैं सबके लिए है। आगे मुक्ताय भूरी करुणाया नमो अलयाय, नमो अलयाय मतलब जो अनवरत परिश्रम करते हैं, कभी कोई कसर नहीं छोड़ते भगवान, हमें बचाने के लिए हर तरीका करते हैं, हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, एवरी ट्रिक इन द बुक जो बोलते हैं। भक्त को भेजते हैं, आचार्य को भेजते हैं, स्वयं पधारते हैं, मंदिरों का निर्माण कराते हैं, कभी कभी शत्रु भेजते हैं। जैसे जीवन में हमारे भक्ति में भी जब अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां आती हैं तो कभी कभार हम अपने आप शरणागत हो जाते हैं भगवान के। उसी के बारे में यहां पर बताया गया, जो भक्त सुसमीक्ष माना होकर। और एक महत्वपूर्ण शब्द है भुंजाना एवं आत्मकृतम विपाकम, ये जो भी समस्या हो रही है मेरे वजह से हो रही है, जो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी जो बोलते हैं ना, वो हमने वही की है, आज तक हम यही करते आए हैं, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते आए हैं भगवान से विमुख होकर। इसलिए गुरुजन प्रभु बताते हैं कि भगवान से विमुख होने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे व्यासासन में बिल्कुल पलट के बैठा है, इस प्रकार हम कृष्ण से विमुख हैं, कृष्ण से इस प्रकार विमुख हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण इतने कृपालु हैं ये बताया गया कि वो फिर भी हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यदि हम प्रार्थना ना भी करते तो क्या आपको लगता है कि भगवान आपको संभालेंगे नहीं, बहुत अंदर से बचाएंगे नहीं? कितने को लगता है कि प्रार्थना करेंगे तो ही भगवान सुनेंगे? ठीक है, फिर प्रार्थना क्यों करते? एक उदाहरण रियलाइजेशन हो सकता है सुनाया होगा। आज आचार्य इस प्रकार से नहीं बता रहे कि प्रार्थना करने से जल्दी सुनते हैं करके, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। उदाहरण ये बताते हैं, जैसे कि कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, बार बार खिड़की पे और बार मार रहा है, किसी ने पूछा था कि कैसे समझे कि हम पतित हैं, हम छोटे हैं, हम कैसे विनम्रता का अनुशीलन करें। श्रील प्रभुपाद ने बताया, इफ यू वॉन्ट टू बिकम हम्बल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट कृष्णा इज। तो बार बार मैं कीड़ा हूं, मैं पतित हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं पतित हूं बोलना भी मिथ्या अहंकार है। ह्यूमिलिटी मीन्स नॉट टू थिंक लेस ऑफ oneself, खुद को छोटा समझना नहीं है विनम्रता, या खुद को कम समझना नहीं है, लेकिन कम खुद के बारे में समझना है। लेस थिंक ऑफ oneself, नॉट टू थिंक लेस ऑफ oneself, नॉट टू थिंक लेस ऑफ oneself, खुद को कम नहीं समझना, लेकिन हम बहुत ही कम खुद के बारे में समझना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कृष्ण, जैसे जगन्नाथ जी, जैसे गौरताय, जैसे प्रभुपाद जी, जैसे अन्य आचार्य, जैसे वो सेवाएं उन्होंने जो हमें दी है, उनका अनुष्ठान, इसके ऊपर ध्यान ज्यादा लगाएंगे तो अपने आप हम सेंटर से निकल जाएंगे। इसका मतलब है, भक्ति का मतलब जब हम बताते हैं कि कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएं, इसका मतलब ये है कि जैसे बताते हैं कि छोटे लाइन और बड़े लाइन के का कंपैरिजन बताते हैं ना, छोटा लाइन उसको बिना मिटाए उसको छोटा कैसे, उसको एक किसी लाइन को बिना मिटाए उसको कैसे छोटा कर सकते हैं, उसके पास और बड़ा लाइन। यू कैन नॉट स्टॉप द बैड न्यूज, यू कैन ओनली इंक्रीज द गुड न्यूज। जीवन में समस्या आती रहेगी, बैड न्यूज आता रहेगा, जीवन के साथ मुखरता भवतीय वार्ता, दैट न्यूज वी शुड हैव, गुड न्यूज, इंक्रीज द गुड न्यूज। तो इसलिए प्रार्थनाएं की जाती हैं अधिक से अधिक। गजेंद्र से ये एक शिक्षा हमें मिलती है। और एक और शब्द है, प्रत्यक्ष दृश्य भगवते बृहते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भगवते बृहते का मतलब है बृहते श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण और कोई नहीं है, स्व अंशेन, आपके परमात्मा रूपी अंश से आप सबके मन में प्रकट होते हैं, प्रतीत होते हैं। परमात्मा किसके अंश है? भगवान है, भगवान के। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, स्थानीय रूप है भगवान का, लोकलाइज्ड एस्पेक्ट। श्रील प्रभुपाद ये शब्द प्रयोग करते हैं परमात्मा। तो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट किनके हैं, किनके हैं, किनका स्थानीय रूप है परमात्मा? भगवान का। इसलिए बृहते श्री कृष्णाय, भगवान बताते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते, अहम आदिर्य देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, सबसे पुराना मैं हूं, सबसे महान मैं हूं। तो इतने सारे कारण हैं जिसे हम समझ सकते हैं कृष्ण ही हैं जिनके बारे में जाने अनजाने में यह हाथी प्रार्थना कर रहा था गजेंद्र, आचार्य ऐसा बताते हैं। अब एक पहली शिक्षा, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो श्लोक आत्मकृतम विपाकम, तो पहली शिक्षा यह है कि भले कोई परिस्थिति हो, जैसे महाराज इंद्रद्युम्न ने जैसे उनको शाप मिला उन्होंने सोचा ये मेरा कर्म है, दिस इज माय डेस्टिनी, या प्रारब्ध जैसे भी समझे, क्योंकि प्रारब्ध से ही शरीर मिलता है, जब फलीभूत होता है हमारे हमारे पाप कर्म, जब फलीभूत होते जब हो जाते हैं पूरी तरह, फ्रक्टिफाइड रिजल्ट ऑफ आवर सिंफुल रिएक्शन, पाप प्रतिक्रियाओं का फलीभूत रूप है ये शरीर। यस्त्विंद्र गोप माधवेंद्र महो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति, छोटा सा कीड़ा है इंद्रगोप करके, उससे लेकर इंद्रदेव तक सबको अपने कर्म के वजह से शरीर प्राप्त होता है। ये जो शरीर प्राप्त हो वैसे प्राप्त हुआ, तो हाथी का शरीर जब प्राप्त हुआ तो इंद्रदेव ने महाराज तुरंत बता दिया ये मेरे कर्म की वजह से। फिलोसॉफी क्लियर है। तो इसको हम ऐसे समझे कि आत्मकृतम विपाक, मेरे साथ जो भी समस्या हो रही है जीवन में तो पहला कारण उसका मैं हूं। सामान्य कर्म मीमांसा यह बोलते हैं कि मैं अच्छा मेहनत करूंगा तो उसका फल मिलेगा। हम सोचते हैं हमें जो अच्छा रिजल्ट मिलता है वो अपने परिश्रम की वजह से मिलता है, खुद पे ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं खुद को। लेकिन जब गलत काम होता है तो तुम्हारे भगवान ने क्या किया, भगवान तुमने क्या किया अब तक, जो किया उसका कंटिन्यूएशन है, तो समझ नहीं पा रहे हैं। या दूसरे के ऊपर हम ब्लेम शिफ्ट करते हैं, अपने फाइल से दूसरे टेबल पर डाल देते हैं, फाइल को उठाकर अपने टेबल से। लेकिन बात यह समझनी है कि आत्मकृतम यह समझना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे से बुरी परिस्थिति से हम जिस बुरी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमारे से जो भी कठिनाइयां हो रही हैं, घट रही हैं, वो सब आत्मकृतम विपाकम, ऐसा समझे पहली बात। या हमारे जीवन में कोई संघर्ष आते हैं, किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा भी हो गया, समस्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो बोलते हैं, संघर्षों का निवारण जो होता है, उसका पहला सिद्धांत यह है ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। स्वयं को हर संघर्ष का पहला कारण समझो, मेरे से हुआ क्या पता, ना रहेगा बास न बजेगा बांसुरी, है ना। अगर किया ही नहीं होता तो ये नहीं होगा, कृष्ण से विमुख हो गए, शुरुआत तो वहीं से है, उतना तो कर लिया, बाकी सबको ब्लेम कर रहे हैं। कृष्ण से विमुख हुआ कौन, मैं कि कोई और, मैं दूसरे को क्यों मैं ब्लेम कर रहा हूं, शुरुआत वहीं से है। तो आत्मकृतम विपाकम, तो कारण इसके कारण हमें समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं तात्पर्य में कि एक भक्त को सदैव भक्ति में संलग्न होना चाहिए बिना भौतिक स्थिति के परवाह किए। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते हैं, कल मैं किसी को बोल रहा था, किसको, मैं श्याम कुंड को बोल रहा था, शायद उनको बोल रहा था, याद नहीं, मैं ये बोल रहा था कि व्हाट विल अ टाइपराइटर डू, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था, वेयर एवर अ टाइपराइटर गोस इट गोस कट 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 कट। तो भक्त कहीं भी जाएगा उसको भक्ति ही करनी है, चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में भक्ति ही करनी है, देयर इज नो अदर एक्टिविटी। संविधानिक स्थिति है भक्त की, भक्ति करना, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन बोलते हैं प्रभुपाद, इसका हिंदी अनुवाद संविधानिक हुआ है लेकिन लग नहीं रहा है सही शब्द है। कल हम लोग चर्चा ही कर रहे थे हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में या मिस ट्रांसलेशन के बारे में। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोलता था इसको, कहते बहुत सारी चीजें दिखती हैं तो इसमें भी है। तो श्रील श्रीधर स्वामी जिनको श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण भागवत को समर्पित किया है उनकी टीका के ऊपर, जीव गोस्वामी भी ऐसे बताते इत्युक्तम स्वामी पादम, अपने संदर्भों में इत्युक्तम स्वामी पादम जो श्रीधर स्वामी महाराज के बारे में बोलते हैं। तो श्रीधर स्वामी महाराज टीका में बताते हैं कि जिस प्रकार कोई जायस औलाद, उर्दू में बताएंगे तो लेजिटिमेट सन, क्योंकि लीगल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं जायस औलाद, तो लेजिटिमेट सन वैद्य संतान जो भी है उसको अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए क्या करना है, बस जिंदा रहना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट बी अलाइव। उसी प्रकार भक्ति की नियमों को अथवा विधि विधानों को अथवा रीति रिवाजों को या भजन क्रिया को पालन करते हुए हमें मात्र रहना है हर परिस्थिति में, मुक्ति पदे दाया भाग, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए अलग कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यस नो नो यस, अर्थात ये समझे कि परम भगवान का सारा उद्देश्य यही है, संपूर्ण सृष्टि का ही उद्देश्य यही है कि कोई भी दंड दिया जाए जीव को उसका भी उद्देश्य यही है कि उसके अंदर पाप की जो प्रवृत्ति है उसका पूरी तरह नाशन, उन्मूल नाशन कराना, बस उसके अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति का आखिरी कण को भी निकाल देना, जैसे कांटे को निकालते हैं, The last vestige, श्रील प्रभुपाद ये शब्द यूज करते हैं, आखिरी आखिरी कण एक प्रकार से, बिंदु बूंद आखिरी बूंद, तो पाप जो भी बचा है उसको भी, इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, 75% ऐसा बताते हैं श्रील प्रभुपाद, बाकी 25% का क्या होगा? तो भागवतम के अलावा भी अन्य इसलिए कई सारे क्रिया है करने के लिए, वो सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन भर भागवतम सुनते रहे और बाकी सेवाएं रुक जाएं, तो इसलिए बाकी सेवाओं के लिए भी 25% दिया है। नित्यम भागवत सेवा, नित्यम अन्य सेवाएं भी है। आगे दूसरी शिक्षा कि जिस प्रकार हम सूरज का सामीप्य करना अगर चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सूरज का अगर सामीप्य हमें करना है, सूरज में प्रवेश करना है, तो हमें क्या बनना है? फायर, आग बनोगे तो सूरज में प्रवेश करोगे करेंगे अगर। तो इसी प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई कड़ी परीक्षा से हम गुजरे नहीं। कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, देयर इज नो फ्री लंच, कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा आचार्य बताते हैं। लेकिन हम भगवान से जरूर ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो शुद्धिकरण की जो कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है वो थोड़ा पेनलेस सर्जरी हो भगवान, जो सर्जरी जो आप करा रहे हो ना थोड़ा पेनलेस कर दो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सर्जरी कर लो, या फिर ईसा मसीह ने जैसे प्रार्थना किया, फादर यू कैन डू ऑल थिंग्स, भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं, लेट दिस चैलिस पास ऑन फ्रॉम मी, मेरे से ये जो है भार आप संभाल सकें लोगों का पाप ग्रहण करने का। आखिरी में उन्होंने बताया बट लेट यूअर विल बी डन नॉट माइन, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा साकार हो, मेरी नहीं। प्रार्थना जरूर ये कर सकते, यदि आप चाहें तो जो शुद्धिकरण प्रक्रिया से आप मुझे गुजरवा रहे हैं इसमें मुझे ज्यादा पीड़ा न हो, यदि आप चाहें तो थोड़ा पेनलेस सर्जरी कर दें भगवान, ये तो इतना तो अलाउड है। तो ये कभी कभी एक बार मायापुर में प्रवचन सुन रहा था तो मैंने भी कुछ ऐसा पूछा था प्रश्न, तो एक वरिष्ठ श्रील प्रभुपाद के शिष्य ने बताया कि आप बहुत सतर्क रहो कि भगवान से आप क्या मांगते हो, क्योंकि किस रूप में आएगा आपको पता नहीं। तो इसलिए प्रार्थना जो है सतर्कता से करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि आचार्यों की जो प्रार्थना है उसको दोहरा सकते हैं। भागवतम इज अ प्रेयर बुक, भागवतम इज अ प्रेयर बुक, उससे जो प्रेयर है उसको दोहरा सकते हैं। जैसे भावबंधन बुरा सपना है, बुरे सपने से बचने के लिए गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की प्रार्थनाएं पढ़ सकते हैं, एक उदाहरण। और तो ये दूसरा दूसरी शिक्षा, पहली शिक्षा कौन सी थी? और दूसरा, जो भी शुद्धिकरण मेरे साथ हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा कीमत तो चुकाना पड़ेगा। आगे बताया गया कि वैदिक साहित्य जो है सबको ये सूचना देते हैं, आई स्टोल आई कैन गो टिल 9:15, आप लोग बैठ सकते हैं 9:10 तक, फिर उसके बाद सवाल 9:10 तक, मुझे 9:15 तक समय दिया आज, तो लास्ट 5 मिनट में सवाल जवाब ले आपके लिए। यहां पे बताया गया, जैसे उपनिषदों में बताया गया रसो वैसह रसग केवायम लब्ध्वानंदी भवति, ये बताया गया कि जो संपूर्ण रसों के आधार हैं, रसों के स्रोत हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में समझने के लिए हमें उनका श्रवण करना चाहिए, इसलिए वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्यों का उद्देश्य ही हमें उस आनंद की प्राप्ति के लिए आकर्षण बढ़ाना है जिससे कि हमें भौतिक भाव बंधन में फंसाने वाले जो निम्न स्तर के आनंद हैं उनसे हम ऊब जाएं। उसके लिए हमें उससे बेहतर कुछ आनंद चाहिए, जिसको श्रील प्रभुपाद हायर टेस्ट बोलते थे। कई कई स्थानों में, इस्कॉन के मंदिरों में गोविंददास को हायर टेस्ट बोलते हैं, हायर टेस्ट। तो यहां पे टारगेट वही होना चाहिए, हायर टेस्ट। तो यहां पे बताया गया कि ये द्वितीय साहित्य जितने भी हैं श्रीमद् भागवतम जैसे आध्यात्मिक दिव्य साहित्य जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हैं, उनका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार हम परम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाकर अपना अनुशीलन करके, उनके आदेशों का अनुशीलन करके, उनके प्रति आकर्षण बढ़ाकर किस प्रकार हम भगवतम लौट सकते हैं। जैसे प्रथम स्कंद में श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान जितनी भी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं उनका उद्देश्य वही है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट, गोलोक का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, भगवान जब भूलोक लीला प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार के लीलाओं को सुन के हमें आकर्षण बढ़ेगा कि गोलोक में कैसा रहेगा, भगवान कैसे रहेंगे, इतने कृपालु है मेरे भगवान, नमोले आया, अनवरत कोशिश कर रहे, छोड़ ही नहीं रहे। हम भी भगवान के पास उतने उतनी आतुरता के साथ जाना नहीं चाहते जितनी आतुरता से भगवान चाहते कि हम उनके पास जाएं। तो ये भागवतम का श्रवण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, ये तीसरी शिक्षा है एक प्रकार से कि भक्ति योग जो है, माता जी जैसे बोल रही थी, भक्ति योग प्रारंभ होता है श्रवण से। श्रील प्रभुपाद ने एक अष्टांग योगी से जब मुलाकात की तो अष्टांग योगी पूछ रहा था उनसे, भक्ति, व्हाट इज भक्ति योग? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, भक्ति योग स्टार्ट्स विद हियरिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, दिव्य अनावृत्ति शब्द जिसको वेदांत सूत्र में बताया गया, उसके श्रवण से प्रारंभ होता है भक्ति योग। तो इसलिए हम भक्ति में संलग्न होना चाहते हैं भगवान के शरण में, तो उसके लिए हमें इस श्रवण बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रवण से हम भगवान को, भगवान का अगर दर्शन हम चाहते हैं तो हमें भागवत का दर्शन अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। दर्शन मतलब फिलॉसफी, इस फिलॉसफी वाले दर्शन को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो भगवान का हम दर्शन कर पाएंगे, यह जरूरी है। अभी जैसे श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं, सिर्फ बैठने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, आई एम नो ब्राह्मण बोलने से कुछ नहीं होता, बैठने से ब्राह्मण का आनंद मिलना चाहिए, तब ब्रह्म में रहोगे, नहीं तो नीचे गिरोगे। आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम, वहां से पतन क्या दो, अनादृत दुष्मदांग्रिया, भगवान के चरण कमलों का अनादर किया गया। चौथी शिक्षा यह है कि जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी होते हैं, वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, या कुछ नहीं तो चीफ मिनिस्टर, लोकल मिनिस्टर, सिविक अथॉरिटी का कुछ बाबू, कुछ तो बन सकते हैं, लेकिन अटल परिश्रम के साथ वो वहां पर पहुंच भी जाए, वो परमानेंट है? कम से सोच लो कि 58 या 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट एज है, वहीं पे पहले काट दिया, परमानेंट नहीं है, पहले बोल गए परमानेंट नहीं है, रिटायरमेंट होगा तुम्हारा, लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि जिस समय तक भगवान हमें रखते हैं उस स्थिति में, तब तक ही हम रह सकते हैं। कोई भी ऐश्वर्य जो हमें मिलता है वो क्षणिक है, हमें याद रहना चाहिए। जो इससे मुख्य शिक्षा यह है कि सिर्फ भक्ति योग ही गजेंद्र को बचा सकता था, भक्ति योग से ही गजेंद्र बच सकता था, इसी प्रकार हम भी भक्ति योग से ही बच सकते हैं। दाक्ष्यम कुटुंब वर्णम कलयुग का लक्षण है कि हर कोई 3-4 सदस्यों वाले अपने परिवार को संभाल के उसी को जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। कितने लोगों को मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है, पूछते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, परिवार को संभालना है। अरे भगवान, भगवान ने भी गीता में कहा है कि परिवार को देखो, माता पिता की सेवा करो। एक बार वापस उनसे पूछो कहां बताया है, बोल नहीं पाएंगे। दाक्ष्यम कुटुंब वर्णम, ये तो सामान्य जीव भी करते हैं, जैसे दो बिलौटे थे किटन, एक दूसरे से वो कुश्ती कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के सामने और प्रेम के साथ। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, सी देयर इज लव एवरीवेयर, सब जगह प्रेम है। हम ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ मनुष्य समाज में हैं इसलिए हम परिवार को संभाल रहे हैं, तो वो भी संभालते हैं, अपने अपने लेवल पर संभालते हैं। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने उसमें से एक बिलौटे को उठाकर अपने गोदी में रखा और उसको, उसके ऊपर हाथ फेरने लगे, प्यार करने लगे उसको, और ये बोलते हुए कि तुम मेरे गोद में अपना सर रखो और मैं तुम्हारा सर काट दूं, ये नहीं हो सकता, बहुत ही बड़ा जघन्य पाप है। अर्थात जितने भी नेता हैं, जो भी जिम्मेदारी के पद पर आसीन है या जिनको भी सेवा मिली है किसी भी प्रकार की, चाहे पति हो, पिता हो, पत्नी हो, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यान् न पतिं न सस्यात् न मोचयेत् यत् समुपैत मृत्यु, हर परिस्थिति में। और हम पे जो आश्रित हैं उनका सर नहीं काटना चाहिए, उनको शोषण नहीं करना चाहिए। जो भक्त भक्ति पाने के लिए मंदिर में आते हैं उनका भक्ति हर हाल में हमें देना चाहिए। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोलते थे, प्रचार ना करना सबसे बड़ा हिंसा का कार्य है, और यह भक्तियों के अंदर ही संभव है। तो गजेंद्र या हम भक्तियों के अलावा और कोई विधि को अपना ही नहीं सकते भगवान तक पहुंचने के लिए। ये चौथी शिक्षा है। आगे हाँ अच्छा, दूसरी ये बात भी है, श्रीपद शंकराचार्य बताते हैं, जटिलो मुंडी लुमचित केश काशायांबर बहुकृत वेश, पश्यन नपी न पश्यति मुंडा उदर अनमित्तम बहुकृत वेशम। जितने भी वेश हम धारण करते हैं पापी पेट को पालने के लिए, बस उसको हम बहुत बड़ा नाम दे देते हैं भले ही। कितना कितना निस्वार्थ है, कितनी निस्वार्थता से अपने परिवार को संभाल रहा है, कितनी निस्वार्थता से समाज सेवा कर रहा है। लेकिन ये सब अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं या स्टेटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स में बोलते हैं, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट। ये सब आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इतना तो करना ही है, जानवर भी करते हैं। और देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, छोटे से छोटे जीव के भी प्रार्थना का सुनते हैं और उसने जो भी कार्य किया है उसको कभी नहीं भूलते हैं। जैसे शील प्रभुपाद के शिष्य थे अनिरुद्ध करके, लॉस एंजलिस में सबसे पहले जुड़े हुए, पहले भक्तों में से एक, तो किसी कारणवश वो भक्ति से विमुख हो गए थे। तो फिर एक बार हवाई एयरपोर्ट में जब शील प्रभुपाद भक्तों से मिल रहे थे तब वो पीछे छुपे हुए थे, उनको एक प्रकार से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि प्रभुपाद के सामने कैसे आऊं, शर्म लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने बताया अनिरुद्ध दास हियर, तो श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद ने उल्टा वहां पर सबस्वरूप महाराज प्रभुपाद के बारे में जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, प्रभुपाद को और इस्कॉन का गुणगान किया जा रहा था, अचानक बीच में रोका प्रभुपाद ने, वेयर इज अनिरुद्ध, और वो पीछे खड़े थे छुप छुप के। वो सामने आए, प्रभुपाद ने बताया कम क्लोजर, और सामने आए कम क्लोजर, फाइनली प्रभुपाद के पास डेस्क के पास आके बैठ गए और प्रभुपाद उनसे अलग अलग चीजें पूछने लगे। प्रभुपाद ने बताया ही जॉइंड इन लॉस एंजलिस, ही वॉज द बिगिनिंग, शुरू शुरू में थे वो। तो इसका मतलब भले हमें कोई योग्यता नहीं है, भगवान देखते हैं हमने जो सेवा की है, विशेष करके जो महत्वपूर्ण सेवा हम करते हैं उसको भगवान कभी नहीं भूलते। इंद्रद्युम्न महाराज ने भक्ति की थी, जैसे कल दुर्लभ सब बोल रहे थे पॉजिटिव तरीके से, अजामिल ने जो भक्ति की थी भगवान ने उसको लिया बचपन में जो किया, इंद्रद्युम्न महाराज तो भक्ति कर ही रहे थे ना, तो नहीं कि भक्ति के मार्ग से तो पतित नहीं हुए। तो उस स्थिति में भगवान उसको उस स्थिति को भूले नहीं। और साथ साथ ये भी समझना है हमें कोई योग्यता नहीं है तो भी गुरु और कृष्ण हमको सेवा में लगाएंगे, ये मत सोचना कि हम बड़े तोप हैं, कुछ नहीं है, हमें कोई क्षमता नहीं है, जितनी भी टैलेंट है इट इज पश्यम में ऐश्वर्यम। भगवान बोलते हैं एकांशेन अस्तित्व जगत, संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्तिकरण भगवान के ऐश्वर्य की ऐश्वर्य का एक अंश है। हमारा टैलेंट क्या है, बहुत बड़े पुजारी है, बहुत बड़े वक्ता है, बहुत बड़े कीर्तनिया है, बहुत बड़े मैनेजर है, बहुत बड़े डैमेजर है, क्या फायदा, क्या कुछ नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए। शील प्रभा से किसी भक्त ने बताया कि वो चाहते थे कि हवाई में बहुत सारे आइलैंड्स है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाएं, उसके लिए एक बोट लेंगे, उस बोट में 12 लोग होंगे और हम प्रचार करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया था। शील प्रभा के पास आके बोले उन्होंने ऑल वी वॉन्ट इज 12 गुड मैन, 12 अच्छे लोग चाहिए हमें। शील प्रभा ने बताया देर आर नॉट इवन 12 गुड मैन इन द होल ऑफ इस्कॉन, पूरे इस्कॉन में 12 अच्छे लोग नहीं। तो तब की बात है जब लोग इससे धुरंधर सेवाएं करते थे। कहने का उद्देश्य कि प्रभुपाद ने हमारी सेवा इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि हमें क्षमता है, हमारी अक्षमता के बावजूद हमारे शुद्धिकरण के लिए शिला प्रभुपाद ने हमें स्वीकार किया है। और भगवान भी ऐसे ही है, इसलिए भूरी करुणा है। तो गजेंद्र हाथी है, इसका क्या प्रार्थना आती है, इसको तो संस्कृत प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता, ये क्या है, हाथी है, मुंह के बदले सूप से बोल रहा है और मेरे आने के बाद कमल निकाल रहा है, तब तो उसने कुछ दिया ही नहीं, इसने पंचरात्र विधि का पालन किया, ऐसा नहीं सोच रहे भगवान। वो देख रहे थे कि ये अच्छा, ये मुझे ही सूचित कर रहा है। आचार्य बताते हैं देवी देवता ब्रह्मा शिव वो सब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनको पता है हमारे बारे में नहीं बोला जा रहा है, बृहते नमस्ते बोल दिया, बृहते कृष्णा है, कृष्ण के बारे में था, छोड़ वही आ जाएंगे, उनको पता है भगवान आ जाएंगे, तो भगवान आ गए। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में एक और श्लोक बोलते हैं, उसको हम स्किप करते हैं। बेसिकली ये है कि वो गेहूं से गेहूं का हस्क को क्या बोलते हैं, भूसिया, भूसा भूसिया दोनों बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच आई वेंट ऑनलाइन बिफोर कमिंग टू दिस क्लास। छिलका भी बोल सकते हैं, उसको जितना पीटना है पीटो, उसे अन्न नहीं निकलेगा। इसी प्रकार जितना भी पीटना चाहे हम, मुख्य बात जो है हमारे जीवन का, जीवन में कोई भी कार्यकलाप में हम बिजी हो जाएं, उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी, हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, हमें सुख प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ भक्तियोग से होगा। बाकी जो भी करेंगे श्रम एव ही केवलम, यह हमें समझना चाहिए। यस, लेसन 5। ठीक है, भक्तियोग बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत साथ साथ में हम लोग इंद्रिय तृप्ति भी कर लेंगे ना, उससे क्या नुकसान, कर भी लेते हैं बाद में, देखो घर का भी हम ध्यान रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा भगवान की भक्ति थोड़ा कम कर लें। देखो प्रभु जी प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो उसका उत्तर स्वाभाविक ये है कि गजेंद्र की जितनी भी उपलब्धियां थी, फैंटास्टिक फैमिली, एक्सलेंट वाइफ, ओबीडियंट चिल्ड्रन, आज्ञाकारी पुत्र, बहुत ही सुंदर पत्नियां, जो सब उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, आत्म सैन्य असत सपी तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्न अपि न पश्यति, फिर भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये समझ सकता है कि देखते हुए भी मैं सच्चाई को नहीं देख रहा हूं कि मेरी सारी उपलब्धियां एक ही क्षण में छीनी जाएंगी। तो भले ही हम भक्ति में भी रहें, भक्ति में भी हमें सेवाएं मिल रही हैं, भक्ति में भी हमें उपलब्धियां मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल रही है, या संभवतः हम विनम्र भी हैं असली में, तो भी यकीन करिए कोई गारंटी नहीं है कि अचानक ये सब बदल सकता है ये परिस्थिति। इसलिए अप्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोकरंजनम, मुर्दे को सजाना है, जितने भी क्षमताएं हम में हो वो सब मुर्दे को सजाना है। यदि भगवान से हम उसको नहीं जोड़ेंगे तो कोई भी हमारे अन्य उपलब्धियां है, अन्य जिम्मेदारियां हैं, उन सबको गौण ही समझें, मुख्य ना समझें। इफ यू वॉन्ट टू सर्व एवरी वन यू कैन सर्व नो वन, बट इफ यू वॉन्ट टू सर्व दैट वन यू कैन सर्व एवरी वन। तो ये एक सिद्धांत है। अब छठी शिक्षा, स्वाभाविक है एक तरीके से जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं हमारे जीवन में, उनका उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक किस प्रकार कृष्ण के शरणागत हों। एक बार याद है मुझे इस सोलनेस भक्ति पुरुषोत्तम तो महाराज बता रहे थे, शायद ब्रह्म पुष्कर में कहीं पे बता रहे थे कि भगवान की एक आदत है, वो अपने भक्तों को चिंता में डाल देते हैं, हाथ पैर मरवाते हैं ऐसे, अंत में वो काम करा भी देते हैं, भगवान खुद ही करा देते हैं। तो एक प्रकार से हम भगवान के प्रति हमारा जो आश्रय लेने की प्रवृत्ति है अथवा या शरणागत होने की प्रवृत्ति है, उसको और तीव्रता से अनुशीलन करें, उसका और तीव्रता से अनुष्ठान करें। इसलिए कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, और ऐसा कोई चीज नहीं है, ध्यान रखें, मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत समस्या है बोलना ही गलत है। देयर इज नो सच थिंग एज ए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, इफ वी आर स्पिरिचुअल देयर इज नो प्रॉब्लम। हम अगर आध्यात्मिक हैं कोई समस्या नहीं है, समस्याएं इसलिए है कि हमने अपने जीवन को पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिकृत नहीं किया है। वी हैव नॉट स्पिरिचुअलाइज्ड आवर लाइफ सफिशियंटली, वी हैव नॉट कृष्णाइज्ड आवर लाइफ सफिशियंटली, कृष्णीकृत नहीं किया हमने अपने जीवन को, इसलिए समस्याएं हो रही है। अगर मैं और केशव नारायण प्रभु हमेशा श्लोक बोलते रहते हैं, एक विख्यात श्लोक है, भक्ति परेशान भव विरक्त अन्यत्रस्य, भक्ति का एक लक्षण है कि पर ईशान भव, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि भक्ति में आ गए तो भक्ति भक्ति परेशान भव, भक्त परेशान होना नहीं है, पर ईशान भव वो इसलिए होता है, भगवान बोलते हैं मनमाना भव मत भक्तो, भगवान नहीं बोलते मनमाना भव मत भक्तो। जब हम मनमाना बनते हैं तब परेशान होते हैं, जब मनमना होता है तो परेशानुभव होता है, ये ध्यान रखें। तो लेसन 6 इज दैट जैसे ये आपने इंटरनेट में कभी तो सुना होगा, मुझे तो मिला था बहुत पहले, किसी ने एसएमएस भेजा था 30 साल पहले, मैंने एक ड्रामा में इस डायलॉग को भी यूज किया था। जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा ना, डोंट से गॉड आई हैव अ प्रॉब्लम, से प्रॉब्लम आई हैव गॉड। टेल द प्रॉब्लम आई हैव गॉड, क्योंकि समस्या इज टेम्पररी, भगवान इज परमानेंट। लेसन 6, लेसन 7, गजेंद्र को भी ध्रुव महाराज जैसा शरीर मिला, आचार्य बोलते हैं ध्रुव महाराज जैसा शरीर मिला, और ध्रुव महाराज ने तो समझ लिया स्वामिन कृतार्थो अस्मि ब्रह्मणा याचे, हरिभक्ति शुद्धोदय में आता है श्लोक, चैतन्य चरितामृत में भी इसका उदाहरण होता है, स्वामिन कृतार्थो अस्मि ब्रह्मणा याचे, मुझे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे था, भौतिक उपलब्धि के पीछे था, यहां तक कि मैं अपने जीवन को बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा था, यह भी अच्छा नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। गजेंद्र भी यह बता था, गजेंद्र को पता है वह आपके शुद्ध भक्त जो है ये नहीं करते, फिर भी मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पशु, मैंने आपका शरण लिया है। जीव श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि कोई भक्त संभवतः गलती से भगवान से अपने जीवन को बचाने के लिए भी प्रार्थना कर लेता है, कर बैठता है, लेकिन वो उसके हृदय के अंदर के सबसे प्रमुखतम इच्छा नहीं है। इट इज नॉट अ मोस्ट इंट्रिंसिक डिजायर ऑफ अ डिवोटी। ठीक है, आप बचा लेंगे तो उस परिस्थिति में उसने प्रार्थना कर ली, लेकिन उसके हृदय के अंदर यही है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा शून्यम नहीं, अभिलाषिता शून्यम। इतनी इच्छा तो है कि भगवान की कृपा मेरे पर बनी रहे। तो अंत में हम इतना समझें कि हमारी प्रार्थना सदैव हो जाए भगवान से, यदि दास्य से मैं कामान वराम स्वाम वरदर्शभा कामाना मृत्य समूहम भवद सुगृणे वरम, यदि भगवान आप कुछ वरदान मुझे देना भी चाहें तो मेरे अंदर से भौतिक इच्छाओं को निकाल दीजिए, जिससे कि मैं आपके प्रति और शरणागत हो जाऊं। या फिर ध्रुव महाराज ने स्वयं प्रार्थना किया था, भगवान उनके सामने आया तो चाहिए चाहिए क्या तुम्हें, तो कुछ नहीं चाहिए, अभी तो बोले कुछ नहीं चाहिए, कृतार्थ तो उसमें चाहिए क्या, उन्होंने बताया भक्तिर मुहु प्रभाताम तुय मे प्रसंगो भूयार अनंत महत्व अमलाशयानाम एनांज शोल्बन मुरु व्यसनम भवाप्ति नेशे भवत गुणगतामृत पानमत्ता, आपके शुद्ध भक्तों के संग में मैं आपकी दिव्य कथा का श्रवण करूं, यही आशीर्वाद मुझे दीजिए हमेशा। और जितना अधिक इस प्रकार का हम आशीर्वाद मांगेंगे भगवान से, उतना अधिक हमें भगवान का गुणगान सुनने को मिलेगा, भागवतों का सटीक हम सदुपयोग कर पाएंगे। तो कंक्लूजन यही है कि हमें पता नहीं कि हमें कितने जन्म लगेंगे भक्ति में आने के लिए या भगवान का सानिध्य प्राप्त होने के लिए। भगवान ने गजेंद्र को तो चांस दे दिया एक जन्म में मुक्त होने का, हमें कम से कम इसलिए अधिक तीव्रता से शरणागत होने की कोशिश करनी चाहिए भगवान के भक्तों के आदेशानुसार। श्रील प्रभुपाद की जय। क्लास का समय हो गया है, अभी किसी को सवाल पूछना है तो अलग पूछना। हरे कृष्ण।